नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया, सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। राज्य में 100 दिन का टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू, 11,000 से अधिक उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनावों के लिए 8 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी, भरतपुर, कोटा और दौसा सहित कुछ जगह हल्की बरसात हुई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन किया है। श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम रहना पूरे विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार पेट्रोल, डीजल, तेल, गैस और उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
मैं आपके माध्यम से देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं है। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है।
देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है तथा सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में लोगों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने का आग्रह किया।
सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है, एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट।
केंद्र सरकार ने इस बीच देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने से उन क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता बढ़ेगी जहां पाइपलाइन सुविधा नहीं है। ये आदेश पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत परिभाषित और केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त सभी सार्वजनिक संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटी और अधिकृत संस्थाओं पर लागू होगा। राज्य में 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की कल से शुरुआत हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज सभागार से इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में पिछले साल 1,75,00,000 से ज्यादा संभावित टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग की गई, जो देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित 11,000 से अधिक उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इनमें 14 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। अभियान के तहत छात्रावासों, वृद्धाश्रम, जेल, रैनबसेरों और औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। इनके माध्यम से टीबी की बीमारी की जल्द पहचान सुनिश्चित होगी, साथ ही अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान जनभागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का रूप लेगा।
इस सब लोगों के हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे एएनएम हैं, हमारे आशा वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये अभियान के अंदर जो है हम सब मिलके, चाहे सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग का योगदान होगा तो ये हम टीबी को टोटली इरेडिकेट कर सकेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा कि भारत जो है एक टीबी मुक्त देश जल्दी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना लिया कि इस तारीख तक, इस साल तक हमें भारत को पूरा टीबी मुक्त बनाना है।
अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अध्यादेशों का निर्माण कर उन्हें संस्थागत स्वरूप दिया है। MDSU NEP आधारित अध्यादेश लागू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कल MDSU में फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यशाला रखी गई। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा को कौशल आधारित और व्यवहारिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री बैरवा ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ ही समाज सेवा के लिए आगे आने पर जोर दिया।
जो कि हमेशा शिक्षा किताबों में नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में भी दे सके, इसको लेकर आज उनको पुरस्कार वितरित किया गया है, जिससे हमारी समाज में अच्छे काम ये संस्थाएं ये बच्चे मिलकर करते हैं, जिसमें हमारे पौधारोपण के काम हो, नशा मुक्ति के हो, रक्तदान के हो, अनेक नवाचारों के रूप में काम करते हैं, और आज उनको इस मंच से सम्मानित करना उनका उत्साहवर्धन ही नहीं बल्कि एक समाज से जुड़ाव बना रहेगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बाकी 113 नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार 13 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, 14 अप्रैल को वार्डों और मतदान केंद्रों पर इसका पठन किया जाएगा, 27 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका निस्तारण 3 मई को होगा। इसके बाद 8 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इससे पहले 196 निकायों में वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया पहले से जारी है, जिसका अंतिम प्रकाशन 22 अप्रैल को होगा। निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची को इस बार अधिक स्थित बनाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए 1 जनवरी 2025 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों को आधार बनाकर वार्डवार सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। बांसवाड़ा में माही क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। बांध भराव क्षेत्र के आसपास पर्यटन बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार होगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता ने बताया कि यहां वाटर स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
बांध भराव क्षेत्र में स्थित अनुपम प्राकृतिक धरोहर, 100 आइलैंड और आसपास की भूमि सुनियोजित पर्यटन विकास हो सकेगा। बैक वाटर में फैले टापू, चारों हरियाली और पहाड़ियों से घिरा यह इलाका पहले ही पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस क्षेत्र में वाटर एक्टिविटीज, नेचर बेस्ड टूरिज्म, व्यू पॉइंट और अन्य आकर्षक विकसित किए जा सकेंगे। राज्य सरकार के इस सुनियोजित प्रयास से यह क्षेत्र न केवल राजस्थान बल्कि देश के प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा, जिसको लेकर बांसवाड़ा खुशी की लहर छा गई है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
और अब मौसम। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का पारा 7 डिग्री से ज्यादा बढ़ा है, वहीं रात के तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि कल भरतपुर, कोटा और दौसा सहित कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी हल्के बादल छाए रहने के साथ पारे में बढ़ोतरी हुई है। दिन का तापमान 4.5 डिग्री बढ़कर 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। 36.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने 26 और 27 मार्च से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार जताए हैं। इससे राज्य के पूर्वी और उत्तरी भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में LPG का उत्पादन बढ़ाया गया, सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। राज्य में 100 दिन का TB मुक्त भारत अभियान शुरू, 11,000 से अधिक उच्च जोखिम वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनावों के लिए 8 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा और प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी, भरतपुर, कोटा और दौसा सहित कुछ जगह हल्की बरसात हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।